स्वागत। आज हम चैप्टर 2 को जरा गहराई से देख रहे हैं। इसमें बात हुई है नेमिंग वर्ड्स की, यानी कि नाउंस की। हमारे पास ये अध्याय है और हम सोच रहे थे कि इसकी जो खास खास बातें हैं उन्हें निकालकर थोड़ा और अच्छे से समझ लिया जाए। याद है ना, ईबी ने कहा था कि हम नेमिंग वर्ड्स में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे।
हाँ बिल्कुल।
तो आज की ये चर्चा एक तरह से उसी तरफ एक कदम है। जो सीखा है उसे थोड़ा ताजा कर लें, है ना?
हाँ, और उसकी अहमियत भी समझ लें।
तो इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या थे, मतलब क्या सीखना था हमें? पहला तो ये कि भाई नाउन होता क्या है। फिर दो खास तरह के नाउन्स, कॉमन और प्रॉपर नाउन्स, इनके बारे में जानना था।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
और वाक्यों में नाउन्स को पहचानना, उनका सही इस्तेमाल करना, और हाँ, प्रॉपर नाउन्स के लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल।
बिल्कुल।
तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल, ये नाउन आखिर है क्या चीज? सोर्स कहते हैं कि ये किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया का नाम है।
हाँ, मतलब कोई भी व्यक्ति, जगह, जानवर, चीज या फिर कोई विचार।
सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना?
बिल्कुल।
जैसे चैप्टर में उदाहरण भी दिए हैं, पर्सन के लिए टीचर, डॉक्टर, रिया, प्लेस के लिए पार्क, स्कूल, दिल्ली,
सही।
थिंग के लिए बुक, टेबल, फोन।
और आइडिया के लिए ऑनेस्टी, फ्रीडम, लव।
हाँ, मतलब हमारे आसपास या हमारे मन में जिसका भी कोई नाम है वो नाउन है।
एकदम सही। और वो पार्क वाली तस्वीर याद है सोर्स में?
हाँ,
उसमें भी तो नाउन्स ही भरे पड़े थे। चिल्ड्रन, पार्क, डॉग, बॉल, काइट, हर चीज जिसका नाम रखा जा सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, मतलब ये भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। इनके बिना हम दुनिया के बारे में बात ही कैसे करेंगे?
सही कहा, इनके बिना तो बातचीत ही नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये बात तो समझ आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नाउन्स के दो खास प्रकार, जिनका जिक्र चैप्टर में काफी है, कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स।
हाँ, और इनका अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है।
तो पहले बात करते हैं कॉमन नाउन्स की। ये क्या होते हैं? ये किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले, मतलब आम नाम है, जेनेरिक नाम।
हाँ, जैसे कोई भी लड़का, मतलब बॉय, या कोई भी शहर, सिटी, कोई भी कुत्ता, डॉग, कोई भी इमारत, मॉन्यूमेंट।
बिल्कुल, ये खास नहीं होते, सामान्य होते हैं। और एक बात, इन्हें लिखते समय कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते।
हाँ, जब तक कि वो वाक्य की शुरुआत में ना आ रहे हों।
हाँ, वो तो है।
और फिर इसके एकदम उलट है प्रॉपर नाउन्स। ये किसी खास, मतलब एकदम पक्के तौर पर किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का अपना नाम होता है।
जैसे
जैसे कोई आम लड़का नहीं बल्कि अमित, कोई आम शहर नहीं बल्कि मुंबई।
अच्छा,
किसी पालतू कुत्ते का खास नाम, मान लीजिए ब्रूनो, या दुनिया की एक जानी मानी इमारत ताजमहल।
और इनकी सबसे बड़ी पहचान,
इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये हमेशा, मतलब हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे वाक्य में कहीं भी आए।
हाँ, ये सिर्फ रूल नहीं है, ये एक तरह का सिग्नल है कि हम किसी खास चीज की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल।
सोर्स में वो जो टेबल दी है ना, वो इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है।
हाँ, देखी मैंने।
जैसे कॉमन नाउन है गर्ल, तो उसका प्रॉपर नाउन हो सकता है प्रिया। कॉमन नाउन है सिटी, तो प्रॉपर नाउन हो सकता है कोलकाता।
सही।
इसी तरह रिवर का यमुना, फेस्टिवल का होली, डे का संडे।
हाँ, ये उदाहरण एकदम साफ कर देते हैं कि कॉमन नाउन एक कैटेगरी है और प्रॉपर नाउन उस कैटेगरी का एक स्पेसिफिक मेंबर है।
बिल्कुल।
और यहीं से बात थोड़ी प्रैक्टिस वाली हो जाती है, इनको पहचानना और सही लिखना। चैप्टर की एक्सरसाइज सी में अच्छे एग्जाम्पल्स थे।
हाँ, जैसे शहर है
जी
तो दोनों प्रॉपर नाउन्स हुए और इसलिए कैपिटल लेटर से लिखे गए।
बिल्कुल।
एक और था, रोहन हैज अ पेट डॉग नेम्ड टॉमी। यहाँ रोहन खास लड़का है और उसके कुत्ते का नाम टॉमी भी खास है।
दोनों प्रॉपर नाउन्स, दोनों कैपिटलाइज्ड।
हाँ जी। इसी तरह द रेड फोर्ट इज अ फेमस मॉन्यूमेंट इन डेल। इसमें रेड फोर्ट और दिल्ली दोनों प्रॉपर नाउन्स। या फिर वी सेलिब्रेट दिवाली इन अक्टूबर और नवंबर। यहाँ दिवाली एक खास त्यौहार है।
तो वो भी प्रॉपर नाउन हुआ।
हाँ, तो ये कैपिटलाइजेशन वाली बात ध्यान रखनी पड़ती है, प्रैक्टिस से आती है।
बिल्कुल सही। ये कैपिटलाइजेशन असर में पढ़ने वाले की मदद करता है, उसे पता चलता है कि किसी खास चीज का जिक्र हो रहा है। अच्छा, चैप्टर में ग्रामर बाइट सेक्शन भी था।
हाँ,
उसमें कुछ और तरह के नाउन्स के बारे में भी बताया गया है। इनको भी समझ लेना अच्छा है ना? नाउन्स की दुनिया थोड़ी और खुल जाती है।
हाँ बताइए।
पहला है कलेक्टिव नाउन। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये एक शब्द होता है जो लोगों, जानवरों या चीजों के पूरे समूह, मतलब कलेक्शन, आपको दिखाता है।
अच्छा, जैसे?
जैसे खिलाड़ियों की एक टीम, चाबियों का एक बंच या छात्रों की एक क्लास। शब्द एक है पर इशारा पूरे ग्रुप की तरफ।
हाँ, समझ गया। टीम मतलब कई खिलाड़ी, बंच मतलब कई चाबियां।
बिल्कुल। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या है?
ये वो नाउन्स हैं जो ऐसी चीजों के नाम हैं जिन्हें हम अपनी पांच इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, मतलब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते।
अच्छा।
जैसे ये आइडियाज होते हैं, क्वालिटीज होती हैं या फीलिंग्स होती हैं, जैसे ट्रूथ सच्चाई, विजडम बुद्धिमानी, फियर डर।
अरे हाँ, ये तो वही हैं जिन्हें हमने शुरू में आइडिया नाउन्स कहा था।
हाँ बिल्कुल, अक्सर वही होते हैं। ये व्याकरण का एक और क्लासिफिकेशन है।
अच्छा, और?
और एक और प्रकार है मटेरियल नाउन। ये उन पदार्थों या सामग्री के नाम होते हैं जिनसे चीजें बनती हैं।
जैसे?
जैसे गोल्ड सोना, वाटर पानी, वुड लकड़ी। इनसे बनी चीजें तो नाउन हैं ही, जैसे सोने की अंगूठी, रिंग, पर ये पदार्थ खुद भी नाउन है।
अच्छा, तो मतलब हॉनेस्टी और लव जैसे शब्द जिन्हें पहले आइडिया कहा वो असल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ये कनेक्शन समझना अच्छा रहा।
हाँ, एक ही चीज को अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है।
चलिए अब नाउन्स के एक और बहुत जरूरी क्लासिफिकेशन पर आते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ये डे टू डे इंग्लिश में बहुत काम आता है।
हाँ, खासकर जब मात्रा बतानी हो।
तो काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं?
हाँ, ये वो हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं एक दो तीन करके, जैसे एक किताब दो किताबें।
हाँ, वन बुक टू बुक्स। इनकी गिनती हो सकती है और इसीलिए इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, जैसे एप्पल का एप्पल्स, चेयर का चेयर्स।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ है अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इन्हें हम अलग अलग गिन नहीं सकते। जैसे हम एक पानी या दो चावल तो नहीं कहते ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
आमतौर पर इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, जैसे मिल्क, राइस, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, ऑनेस्टी।
अच्छा, ऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल है, जो एब्स्ट्रैक्ट भी था।
हाँ, ये दिखाता है कि नाउन्स एक से ज्यादा कैटेगरी में फिट हो सकते हैं। ऑनेस्टी एक विचार है, एब्स्ट्रैक्ट, और उसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल।
सही।
और यहीं पर क्वांटिफायर्स का रोल आता है, वो शब्द जो मात्रा बताते हैं।
हाँ, ये जरूरी है।
काउंटेबल नाउन्स के साथ अक्सर मैनी, फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ जैसे शब्द लगते हैं, जैसे देर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच, लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ बिट ऑफ जैसे शब्द, जैसे आई नीड अ लिटिल एडवाइस।
ये जानना जरूरी है, मैनी इन्फॉर्मेशन या मच बुक्स तो गलत हो जाएगा।
बिल्कुल गलत। ये क्वांटिफायर्स सही नाउन के साथ ही लगते हैं। अच्छा, अब नाउन सिर्फ नाम बताने का काम नहीं करते, वाक्य में उनकी भूमिकाएं भी बदलती हैं। सोर्स में बताया है कि नाउन वाक्य में क्या क्या काम कर सकता है।
हाँ, ये समझना वाक्य के स्ट्रक्चर को समझने जैसा है।
बिल्कुल। नाउन वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब जो काम कर रहा है।
जैसे?
जैसे रवि इज प्लेइंग। यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है? रवि। तो रवि सब्जेक्ट है।
ठीक है।
नाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब जिस पर काम का असर हो रहा है।
जैसे?
जैसे ही रीड्स बुक्स। वो क्या पढ़ता है? किताबें। तो बुक्स यहाँ ऑब्जेक्ट है।
अच्छा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और
नाउन एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताता है। अक्सर बी वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद आता है।
उदाहरण?
जैसे शी इज अ टीचर। यहाँ टीचर शब्द शी के बारे में बता रहा है कि वो कौन है, तो टीचर यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। नाउन पोजेसिव रूप में भी आ सकता है, मतलब अधिकार दिखाने के लिए, वो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर।
हाँ, जैसे दिस इज प्रियाज पेन। ये पेन प्रिया का है।
बिल्कुल। और नाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे?
जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ अंडर एक प्रेपोजिशन है और टेबल उसका ऑब्जेक्ट है। बिल्ली किसके नीचे है? टेबल के नीचे।
वाह, मतलब नाउन्स वाक्य में कितने अलग अलग रोल निभाते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, पोजेसिव, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
हाँ, ये दिखाता है कि ये कितने वर्सेटाइल हैं।
सही का। और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है नाउन फ्रेजेस का, जिसका जिक्र सोर्स में है। ये क्या चीज है?
हाँ, नाउन फ्रेजेस, ये असल में नाउन और उसके साथ जुड़े कुछ और शब्द होते हैं।
जैसे?
जैसे डिटर्मिनर्स, ए, द, दिस, और एडजेक्टिव्स बिग रेड ओल्ड ये सब मिलकर एक नाउन यूनिट की तरह काम करते हैं.
उदाहरण से समझाइए.
जैसे द टॉल बॉय, अ ब्यूटिफुल रेड कार, एन इंटरेस्टिंग आइडिया.
अच्छा, तो इसमें बॉय, कार और आइडिया मेन नाउन है.
बिल्कुल. और द टॉल, अ ब्यूटिफुल रेड, एन इंटरेस्टिंग, ये सब उनके बारे में और जानकारी दे रहे हैं. ये पूरा का पूरा फ्रेज द टॉल बॉय भी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है.
समझ गया. अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर. सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाया जाए? अंग्रेजी लिखने पढ़ने के लिए ये नियम बड़े काम के हैं.
हाँ, ये तो रोजमर्रा की जरूरत है. सोर्स में कुछ मेन रूल्स दिए हैं.
सबसे आम तरीका क्या है?
सबसे आम तो है कि नाउन के आखिर में सिर्फ एस जोड़ दो. जैसे बुक से बुक्स, कैट से कैट्स.
ठीक है. और अगर नाउन एस, एक्स, जी, सी एच या एस एच में खत्म हो रहा हो
तो ई एस जोड़ते हैं उच्चारण में आसानी के लिए. जैसे बस से बसेस, बॉक्स से बॉक्सेस, वॉच से वॉचेस, डिश से डिशेस.
अच्छा, और वो वाई वाला रूल?
हाँ, अगर नाउन किसी कॉन्सनेंट के बाद वाई पर खत्म होता है तो वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं. जैसे बेबी से बेबीज, सिटी से सिटीज.
लेकिन इसमें एक पेच है ना?
हाँ, अगर वाई से ठीक पहले वाउल ए ई आई ओ यू हो तो सिर्फ एस लगता है. जैसे की से कीज, बॉय से बॉयज. ये छोटी सी बात है पर जरूरी है.
और वो एफ या एफी वाले?
हाँ, अगर नाउन एफ या एफी पर खत्म हो तो अक्सर एफ या एफ ई को हटाकर वीज लगा देते हैं. जैसे लीव से लीव्स, नाइफ से नाइव्स. पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ध्यान रखना पड़ता है.
और फिर आते हैं वो इरेग्युलर प्लूरल्स जो किसी नियम को नहीं मानते.
हाँ, वो तो याद ही करने पड़ते हैं. कुछ में ई-एन लगता है या अंदर का वाउल बदल जाता है.
जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन.
हाँ, मैन का मैन, वुमन का वुमेन, टूथ का टीथ, फुट का फीट.
और कुछ तो और भी अजीब हैं, या तो पूरी तरह बदल जाते हैं या बिल्कुल नहीं बदलते.
हाँ, जैसे माउस का माइस, गूस का गीस, और शीप, डियर, फिश जैसे कुछ है जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही रहते हैं.
और वो कैक्टस का कैक्टा है जैसे.
हाँ, वो दूसरी भाषाओं से आए हुए नाउन्स हैं, उनके अपने प्लूरल फॉर्म्स होते हैं.
तो ये प्लूरल बनाने के नियम खासकर इररेगुलर वाले थोड़े याद रखने पड़ते हैं.
हाँ, अभ्यास से याद हो जाते हैं. अच्छी बात ये है कि ज्यादातर कॉमन नाउन्स रेगुलर रूल्स ही फॉलो करते हैं. इनको जानने से लिखने में गलतियाँ कम होती हैं.
बिल्कुल, भाषा ज्यादा सही लगती है.
अच्छा, चैप्टर में नाउन्स के जेंडर्स का भी जिक्र है. अंग्रेजी में नाउन्स को चार जेंडर कैटेगरीज में बांटा गया है.
हाँ, मैस्कुलिन, फेमिनिन,
कॉमन और न्यूटर.
ये जानना भी भाषा की बारीकियों को समझने में मदद करता है.
बिल्कुल. जेंडर स्पेसिफिक नाउन्स वाले हिस्से में अच्छे उदाहरण थे कि मैस्कुलिन पुरुषलिंग से फेमिनिन स्त्रीलिंग कैसे बनता है.
हाँ, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, लायन का लायनेस, होस्ट का होस्टेस. ये दिखाता है कि अंग्रेजी में भी लिंग बताने के तरीके हैं.
हाँ, और सोर्स ये भी बताता है कि जेंडर बदलने के तरीके क्या क्या हैं.
जैसे
एक तो है कि शब्द ही बदल जाता है. जैसे फादर का मदर, अंकल का एंट.
ठीक.
दूसरा, मैस्कुलिन नाउन के अंत में कोई सफिक्स एस, ईन वगैरह जोड़कर फेमिनिन बनाते हैं. जैसे वेटर का वेट्रेस, पोएट का पोएटिस. एस सबसे कॉमन है.
अच्छा,
और तीसरा, अगर कंपाउंड वर्ड है, दो शब्दों से बना नाउन, तो उसके लिंग बताने वाले हिस्से को बदल देते हैं. जैसे लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्कमेड.
समझ गया. अब उस फोर जेंडर्स वाली टेबल पर वापस आते हैं. ये चार प्रकार कौन कौन से थे?
पहला, मैस्कुलिन जेंडर. ये मेल लोगों या जानवरों के लिए, जैसे मैन, लायन, फादर, किंग.
ठीक है.
दूसरा, फेमिनिन जेंडर. ये फीमेल लोगों या जानवरों के लिए, जैसे वुमेन, लायनेस, मदर, क्वीन. तीसरा, कॉमन जेंडर. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये उन नाउन्स के लिए है जो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं.
जैसे
चाइल्ड, स्टूडेंट, पेरेंट, डॉक्टर, टीचर. जब तक हमें बताया ना जाए, हमें पता नहीं होता कि वो पुरुष हैं या महिला.
हाँ, ये दिखाता है कि अंग्रेजी कई बार जेंडर न्यूट्रल भी हो सकती है.
बिल्कुल. और चौथा, न्यूटर जेंडर. ये उन चीजों के लिए है जिनमें लिंग नहीं होता, मतलब बेजान चीजें.
जैसे टेबल, चेयर, बुक, कार, हाउस.
हाँ, कभी कभी छोटे जानवरों या बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है जब लिंग बताना जरूरी ना हो।
अच्छा,
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस चैप्टर टू से नाउन्स के बारे में हमने क्या सीखा? सबसे पहली और बुनियादी बात, नाउन्स नाम वाले शब्द हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया। ये भाषा की नींव है एक तरह से।
हाँ, इनके बिना तो काम ही नहीं चलता।
फिर कॉमन सामान्य, आमतौर पे लोअर केस, और प्रॉपर खास, हमेशा कैपिटलाइज्ड। नाउन का फर्क समझना और सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
हाँ, लिखने में क्लैरिटी आती है इससे।
हमने ये भी देखा कि नाउन्स की कई और परतें हैं, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। उनकी अपनी विशेषताएं हैं, जैसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल होना। ये तय करता है कि उनके साथ मैनी आएगा या मच, फ्यू आएगा या लिटिल।
सही।
उनके सिंगुलर और प्लूरल रूप होते हैं, जिनके अपने नियम हैं, कभी कभी थोड़े ट्रिकी।
हाँ, वो इररेगुलर वाले।
और उनका जेंडर भी होता है। इन सबको समझना अंग्रेजी को सही तरह से इस्तेमाल करने में मदद करता है।
तो कुल मिला के बात यह है कि नाउन्स सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है, ये वो टूल्स हैं जिनसे हम दुनिया को बांटते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और बात करते हैं।
बिल्कुल, हर नाउन अपने साथ एक तरह की जानकारी लेकर आता है। आम है या खास, गिन सकते हैं या नहीं, एक है या ज्यादा, लिंग क्या है।
ये सब जाने बिना भाषा का सही इस्तेमाल मुश्किल है।
और यहीं पर एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमने नाउन फ्रेज की बात की थी, जैसे अ बिग रेड बॉल, जहां नाउन के साथ एडजेक्टिव्स आते हैं।
हाँ।
सोर्स कहता है कि ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि नाउन से पहले आने वाले एडजेक्टिव्स का जो क्रम होता है वो क्यों जरूरी होता है?
मतलब
क्या अ बिग रेड बॉल और अ रेड बिग बॉल सुनने में एक जैसे लगते हैं?
नहीं, दूसरा वाला थोड़ा अजीब लगता है।
हाँ, अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स के क्रम के भी कुछ अलिखित से नियम होते हैं। ये दिखाता है कि नाउन्स और उनके आसपास के शब्द कैसे मिलकर बहुत सटल मीनिंग पैदा करते हैं। ये सोचने लायक है कि हम चीज़ों का वर्णन करते समय शब्दों को किस ऑर्डर में रखते हैं और क्यों।
वाकई ये तो सोचने वाली बात है।
तो अगली बार जब आप कुछ पढ़ें या किसी से बात करें, तो इन नेमिंग वर्ड्स, इन नाउन्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
हाँ, आप पाएंगे कि ये हर जगह हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।
इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।